आज राधाष्टमी है, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस, जो कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी के केवल 15 दिन बाद आता है। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के प्राकट्य में केवल 15 दिन का अंतर है। श्रीमती राधा रानी 15 दिन से छोटी हैं भगवान श्री कृष्ण से। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी नित्य रूप से गोलोक वृंदावन में है। राधा कृष्ण को कोई अलग नहीं कर सकता। राधा कृष्ण परम सत्य है। परंतु राधा कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब इस भौतिक जगत में लाखों लाखों जन्म बिता चुके हैं। भौतिक जगत की झूठी धारणाएं जो कि इस देह बुद्धि के ऊपर आधारित हैं, इन धारणाओं के माध्यम से राधा कृष्ण को देखना या समझना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग राधा कृष्ण की लीलाओं को गलत समझते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि राधा कृष्ण की लीलाओं को एक साधारण मनुष्यों की लीला समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण की लीलाएं ये दिव्य स्तर पर स्थित हैं और इनकी तुलना कोई भौतिक पुरुष स्त्री के संबंध से नहीं किए जा सकते। कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि कृष्ण परम सत्य है, परंतु राधा रानी केवल एक साधारण गोपिका स्त्री है, परंतु यह भी सत्य नहीं है। श्रीमती राधा रानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी है, इसलिए वो जीव तत्व नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के दृष्टि से राधा कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं। कोई लोग ऐसे हैं जो राधा कृष्ण को परम सत्य मानते भी हैं, लेकिन बड़े सहज रूप से राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। इसको सहजीय भाव कहते हैं। बिना उस आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हुए वो आध्यात्मिक लीलाओं में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, यह गलत है। राधा कृष्ण की सेवा में अपराधों का विचार होता है। राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह की सेवा करते समय हमें बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई नियमों का विचार होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सेवा में कोई अपराध का विचार नहीं है। गौर निताई ये कलयुग के लिए बड़े कृपालु हैं, क्योंकि ऐसे पतित जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने ठान लिया है कि हम कोई अपराध स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कलयुग के लोग अपराधों से भरे हुए हैं। अगर कलयुग के लोगों का अपराध स्वीकार किया जाए तो इन लोगों के उद्धार के लिए कोई भी संभावना नहीं रहेगी। इसलिए वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं और हमें उनकी सेवा की संधि देते हैं, जिससे कि हम धीरे धीरे से अपने हृदय को शुद्ध करा दें। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरांग बोलिते होवे पुलक शरीर। कब वो दिन आएगा जब गौरांग महाप्रभु का नाम का उच्चारण करके मेरा शरीर कांपने लगेगा। हरि हरि बोलिते नयने बबनीर। कब उस फिर ऐसे अवस्था में जब हम हरि का नाम का उच्चारण करेंगे तब आंखों से प्रेम के आंसू बहेंगे, उसके पहले नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हमें राधा कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए, उनके अलावा यह संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय शिष्य षड गोस्वामियों को उपदेश दिए थे, जीव तत्व से लेकर सृष्टि तत्व से लेकर आगे राधा कृष्ण तत्व, राधा कृष्ण लीला के स्तर तक ये सारे उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिए। षड गोस्वामियों ने कई ग्रंथ लिखे और उन्होंने अपने शिष्यों को ये ग्रंथ समझाए। उनमें से एक थे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने के चैतन्य चरितामृत की रचना की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और श्री गोस्वामी और उनके अनुयायियों के माध्यम से ही हमें राधा कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझाबो युगल प्रीति। जब रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में आश्रित होकर हम ये युगल जोड़ी राधा कृष्ण को कब हम समझ पाएंगे, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसी प्रकार से बार बार रूप रघुनाथ की कृपा की अभिलाषा करते हुए वो चैतन्य चरितामृत की रचना करते हैं। इसलिए हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्यों के पदचिन्हों में चलना, उनका आश्रय लेना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। केवल जैसे उन्होंने समझाया है, जैसे उन्होंने समझा है, उसी तरह से हम राधा रानी को समझ सकते हैं। आज हम चैतन्य महाप्रभु के एक महत्वपूर्ण संवाद के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि श्रील रामानंद राय से हुआ। पूरा संवाद तो संभव नहीं होगा, 4-5 साल पहले राधाष्टमी के दिवस पर इस संवाद का पहला हिस्सा, इस संवाद के पहले हिस्से के बारे में चर्चा की गई थी। आपको याद होगा कि जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कई प्रश्न पूछे, मूल प्रश्न यह था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और रामानंद राय एक के बाद एक उत्तर देते गए। सबसे पहले संक्षिप्त में, केवल 2-4 मिनट में संक्षिप्त रूप में हम याद करेंगे कि रामानंद राय ने क्या उत्तर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें अपना स्वधर्म आचरण करना चाहिए। स्वधर्म का आचरण मतलब जो वर्ण और आश्रम से हम हैं उसके जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं, आगे जाओ। सिद्धांत के लिए उन्होंने श्लोक प्रमाण के रूप से प्रस्तुत किए। फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण अर्पण, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल जो है वो भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह भी ठीक नहीं है, आगे चलो। ठीक नहीं है नहीं, परंतु और आगे बढ़ो, यह भी बाहरी है। केवल कोई व्यक्ति केवल कृष्ण को कर्म अर्पण करता रहे लेकिन हृदय बदले नहीं तो लाभ नहीं है, आगे बढ़ो, यह भी बाहरी चीज है, आगे बढ़ो। फिर रामानंद राय ने कहा स्वधर्म को त्याग करना यही सबसे बड़ी चीज है और कृष्ण के शरण में जाना। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा आगे बढ़ो, बढ़ते रहो आगे। फिर रामानंद राय ने कहा ज्ञान मिश्र भक्ति को प्राप्त करना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद् भक्तिं लभते परम। चैतन्य महाप्रभु ठीक, आगे आगे बढ़ो और आगे, ये भी बाह्य है, आगे बढ़ो। फिर उन्होंने कहा ज्ञान शून्य भक्ति, और ज्ञान शून्य भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति। और इस प्रेमा भक्ति के लिए उन्होंने एक श्लोक कहा ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिकताम तनुवान मनोभिर ये प्रायसो जित जित प्यसित स्त्री लोक्याम। यह ब्रह्मा जी का एक श्लोक है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध से, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति झूठे धारणाओं को त्याग कर केवल भक्तों के संग में रहकर आपका गुणगान करता है और सुनता है, और उसका हृदय, उसकी वाचा, उसका शरीर, उसके क्रियाएं सब आपको समर्पित करता है, आपके गुणगान सुनते हुए करते हुए, तो वो व्यक्ति आपको जो कि अजित के नाम से जाने जाते हैं वो जीत सकता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना कि रामानंद राय कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य है कि हम कृष्ण के भक्तों के साथ में बैठकर हम कृष्ण कथा करें और सुने, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा एह होय, हाँ ये ठीक है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ो। अब तक चैतन्य महाप्रभु कहते आए थे एहो बाह्य, ये बाह्य है और आगे बढ़ो, लेकिन इस समय पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है लेकिन आगे बढ़ो। फिर आगे चल के उन्होंने कहा प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना भी अलग अलग तरह से हो सकता है। हम जीवन का लक्ष्य है कि भगवान का दास बनना, दास रस में भगवान की सेवा करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा एह होय, आगे कहो और भी बोलो। फिर वो आए सख्य रस के स्तर पे, हर एक स्तर में कोई ना कोई उदाहरण देते गए, कोई श्लोक भागवत का या अन्य ग्रंथों का बोलते गए। फिर महाप्रभु का सख्य रस बहुत अच्छा और आगे बढ़ो। फिर वो आए वात्सल्य रस के ऊपर, वात्सल्य रस से भी ठीक है बहुत अच्छा आगे बढ़ो। फिर आए माधुरी रस या श्रृंगार रस, और उन्होंने समझाया कि वास्तव में माधुरी रस जो है जो कांता प्रेम कहलाता है, जिसमें भक्त जो है वो भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रेमी मानते हैं, ये सबसे ऊंची भक्ति है, पांच रसों में से सबसे ऊंचा रस यही है। और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वास्तव में अलग अलग रसों में, पांचों रसों में विशेष गुण होते हैं, शांत रस में, दास्य में, सख्य वात्सल्य इत्यादि में हर एक में गुण होते हैं, और जैसे जैसे ये हम ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे इन गुणों की वृद्धि होती है। जो शांत रस में है वो गुण दास्य रस में भी है, लेकिन दास्य रस में एक ऐसा गुण है जो कि शांत रस में नहीं है। दास्य रस के अंदर जो गुण है वो अवश्य सख्य रस में है, परंतु सख्य रस में जो विशेष गुण है वो दास्य रस में नहीं है। सख्य रस में जितने भी गुण हैं वो वात्सल्य रस में है, परंतु वात्सल्य रस में जो विशेष गुण है वो सख्य रस में नहीं है। और वो उदाहरण देते हैं इस पंच, इन पंच महाभूतों का। सबसे सूक्ष्म पंच महाभूत है खम, खम से आगे फिर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो जो गुण खम में होते हैं वो वायु में भी आ जाते हैं, लेकिन वायु वाले गुण जो है वो खम में नहीं रहते, जो विशेष अधिक गुण है वायु के अंदर। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते सारे पांच गुण जो हैं वो पृथ्वी में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से रामानंद राय कहने लगे कि सर्वश्रेष्ठ रस ये माधुरी रस है, क्योंकि इस माधुरी रस में अन्य चारों रसों के गुण हैं, और इसके अलावा इस माधुरी रस में वो विशेष गुण भी हैं जो कि अन्य चार रसों में नहीं है, इसलिए यही सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे कई पद्धतियां हैं, रस हैं, जिनसे कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु हालांकि ये सारे रस अपने तरह परिपूर्ण हैं, लेकिन तरतम्य दृष्टि से देखा जाए, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो रस में अंतर होता है। हर एक भक्त अपने अपने रस में पूरी तरह से संतुष्ट होता है, चाहे वो दास्य रस में भक्त हो या सख्य में हो या माधुरी में हो, हर एक भक्त पूरी तरह से संतुष्ट की का अनुभव करता है, क्योंकि आखिर ये पांचों रस कौन से आधार पर स्थित हैं? प्रेमा भक्ति के आधार पर स्थित हैं। प्रेमा भक्ति में बिल्कुल कोई भौतिक प्रदूषण नहीं होता है, ये शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होता है। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होने के नाते ये जो भी रस है ये पूरी तरह से शुद्ध है, कोई भौतिक कलमश इनमें नहीं है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने रस में पूरी तरह से संतुष्ट है। दास्य रस वाले भक्त को यह नहीं लगता कि काश मैं गोपी होता, या सख्य रस में जो उनके मित्र होते हैं उनको ऐसा नहीं लगता कि अरे मुझे एक वरिष्ठ गोप गोपी होना चाहिए था, तब माता पिता की तरह मैं कृष्ण से प्रेम कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं लगता। हालांकि वो जानते भी हैं कि उनका प्रेम हमसे शायद श्रेष्ठ हो सकता है, परंतु मैं मेरे जगह में ठीक हूं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, यह है रस। कई बार भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम वैकुंठ से गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, अगर हम वैकुंठ में निवास करते हैं तो क्या हम जा सकते हैं। या तो फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हम अगर कृष्ण के मित्र हैं गोलोक वृंदावन में तो क्या हम गोपी बन सकते हैं। वैसे तो कोई बंधन नहीं है, अवश्य आध्यात्मिक जगत में कई कल्प वृक्ष हैं, चिंतामणि धाम है वो, तो हमारी हर इच्छा पूरी हो सकती है कृष्ण की सेवा में। परंतु क्योंकि हर एक जीव का एक निर्धारित रस रहता है और उस रस के अनुसार ही वो बिल्कुल स्थिर रहता है, उसको रस बदलने की इच्छा होती ही नहीं है। तो हालांकि एक दृष्टि से ठीक है, कुछ भी हो सकता है, परंतु ये साधारणतः ये नहीं होता, क्योंकि हर एक भक्त अपने अपने प्रेम में वो बिल्कुल संतुष्ट रहता है। लेकिन तरतम्य दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो रामानंद राय कहते हैं कि माधुर रस जो है ये सबसे श्रेष्ठ रस माना जाता है, और इसमें निम्न श्रेणी और ऊंचे श्रेणी का विचार होता है, और क्रमशः इनका रस जो है वो बढ़ते रहता है, और माधुर रस में जब तक पहुंचता है तो तब सबसे मीठा हो जाता है, और माधुर रस में परिपूर्ण प्राप्ति हो जाती है भगवान कृष्ण के चरण कमलों की। इसलिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, और ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। और फिर भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों को उपदेश देते हैं श्रीमद् भागवत में, उसका प्रमाण रामानंद राय देते हैं। मयि भक्तिर्भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दिश्चायत आसीन मत स्नेहो भवती नामदापनः। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं मयि भक्तिर्भूतानां अमृतत्वाय कल्पते, जो व्यक्ति वास्तव में अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, इस मृत्यु से पूर्ण होना चाहते हैं, मयि भक्ति ही भूतानाम, तो मेरे भक्ति करने से तुरंत वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से, किस प्रकार का स्नेह चाहिए इसे, ऐसा स्नेह जो कि बिल्कुल शुद्ध है, चिन्मय है। और हे गोपियां, आप सब भाग्यशाली हो कि आपके हृदय में ऐसा ही स्नेह है मेरे प्रति, इसलिए निश्चित रूप से आप सब मेरे गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर पाओगे। रामानंद राय कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भाषा में, कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व कैले आशे जे जाछे भजे कृष्ण तार भजे तय छे। कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व काले आशे, कि कृष्ण भगवान ने एक प्रतिज्ञा की है जो कि अनंत काल तक ये रहेगा सर्वकाल के लिए, और वो क्या है, जो जाय छे भजे कृष्ण तारे भजे तय छे, कि जो जिस प्रकार से उनका भजन करता है, उनकी सेवा करता है, उसके अनुरूप ही कृष्ण उस प्रेम का प्रदान आदान प्रदान करते हैं। और इसके लिए वो कौन सा श्लोक बोलते हैं भगवद गीता का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, कि जैसे हम भगवान के शरण में जाते हैं वैसे वैसे उसके अनुरूप ही भगवान सामने आते हैं। तो भगवान की सेवा करना कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। इस दुनिया में हम दूसरों की सेवा करते हैं, हम कभी प्रेम भी करते हैं, लेकिन कितनी बार देखा जाता है कि लोग निराश हो जाते हैं उस प्रेम में, क्योंकि वो देखते हैं कि वो प्रेम करते हैं दूसरे से लेकिन दूसरे प्रेम को लौटाता नहीं है। ऐसे कितने बार लोग निराश हो जाते हैं भौतिक संसार के तथा कथित प्रेम से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है, अगर थोड़ा भी भगवान श्री कृष्ण से हमने प्रेम किया तो श्री कृष्ण अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भगवान के पास बहुत है देने के लिए, सब कुछ उनका है। तो भगवान को जब हमें कुछ देना है, और खास करके भगवान अगर हम उनका सर्वस्व हमको देना चाहते हैं, तो उनके पास इतना है कि हमारे पास वो शक्ति नहीं है उस चीज को स्वीकार करने के लिए। तो ऐसे जब रस में भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती जाती है भक्त के हृदय में, तो भगवान ज्यादा से ज्यादा समर्पित हो जाते हैं भक्तों के चरण कमलों में। शांत रस से दास्य, दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य। तो ऐसे भक्तों को भगवान ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब कुछ देते रहते हैं। लेकिन फिर एक समय ऐसे आता है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब जैसे ये अभी लागू नहीं होता। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं चलाते हैं चलाते चलाते 50 किलोमीटर की गति में 60, 70, 80, 100, फिर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है, गाड़ी टूट पड़ती है। अभी सरकार ने कई ऐसे राजमार्ग बनाए हैं जिसमें बिल्कुल विदेश की तरह है ये राजमार्ग, एक्सप्रेसवे कहते हैं उनको, मुंबई से पुणे पहले बनाया था। और भारत में हमको आदत नहीं है इतने तेज गति से चलने के लिए, क्योंकि तेज चलने के लिए कोई सुविधा है ही नहीं। इतने छोटे छोटे रास्ते, इतने सारे गाड़ियां, इतनी भीड़, तो कहां तेजी से चल सकते हैं। तो यहां पर एक संधि मिल गई लोगों को, तो बस एक्सेलरेटर पे पैर दबा दिया, दबा के चलने लगे, 100, 150, 200 तक चलने लगे। लेकिन जैसे रास्ते वैसे गाड़ी, तो गाड़ियां भी इतनी तेज गति के लिए बनाई नहीं गई थी उस समय। तो कितनी ऐसे खबर आए जिसमें गाड़ियों के चक्के ही जो पहिए हैं वो सब निकल गए और गाड़ी में कितने अपघात हो गए, गाड़ी के पहिए चक्के ही निकल गए, गाड़ी से फूट गए कई बार। इसलिए बार बार वहां नोटिस लगा हुआ रहता है, अब देखेंगे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे में, कि ज्यादा तेजी से नहीं जाइए, आपके टायर फूट सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, फिर एक सीमा होती है, उस सीमा को पार करेंगे तो दुर्घटना हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है सब। तो कृष्ण भगवान की कोई सीमा नहीं है, वो तो भगवान है, सीमा होती तो भगवान कैसे होते। लेकिन प्रेम के विषय में उनकी भी सीमा होती है। वो देखते हैं कि प्रेमा भक्ति के स्तर में मेरे जितने भक्त हैं, मैं उनको दे रहा हूं, जितना वो प्रेम दे रहे मैं उसका आदर प्रदान कर रहा हूं, अनुरूप उसके अनुरूप में कर रहा हूं, करते करते। लेकिन जब माधुर्य तक पहुंच जाते हैं तो ये यथा माम प्रपद्यंते वाला जो सूत्र है ये काम नहीं करता, अभी फेल हो जाता है उस टाइम। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, अब आपने इतना मुझे दिया है, आपकी शरणागति, आपकी प्रेम, आपका प्रेम जो है इतना तीव्र है कि इतना मैं आपको दे ही नहीं सकता। मैं भी अब कंगाल हो गया हूं, मेरे पास कुछ रहा नहीं तो आपको देने के लिए। मैं अभी आपका सदैव ऋणी हूं। जैसे कोई व्यक्ति अपने कर्जदार के पास आता है, कहता है कि दे दो पैसे, मेरे से 2 लाख रुपए तुमने लिए थे, दे दो। वो क्या है मेरे पास, देखो जेब में भी कुछ नहीं है, घर भी खाली है, क्या लेना ले लो, तुम क्या कर सकता हो, कुछ नहीं दे सकता हूं तुमको, हाथ खड़ा कर देते हैं। तो माधुर्य रस में भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सामने हाथ खड़ा कर देते हैं, अब मैं क्या दे सकता हूं आप सबको। तो ये है गोपियों का प्रेम, कोई साधारण प्रेम नहीं है, ऐसा प्रेम जिसके सामने भगवान श्री कृष्ण भी बिल्कुल खाली हाथ हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, रामानंद राय कहते हैं, ए प्रेम निरूप न पारे भजिते अतौ वरुण होए कोय भागवते। भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के प्रेम के अनुरूप उपसेवा नहीं कर सकते माधुर्य रस में, इसलिए वो हमेशा ऋणी हो जाते हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत का, दशम स्कंद का। न पारेहम निरवत संयुजं स्वसाकृत्यं विभुतायुषा पिवः यामा भवन्तो जयतिर्ह शृंखलाः संघृष्य तद्वः प्रतियातु साधुना। न पाए अहम, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। न पा रहे अहम, क्या मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात क्या नहीं है। निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम, स्वसाधु कृत्यम, आपके जो बहुत अच्छे कार्य हैं, कृत्य हैं, और जो बिल्कुल निरवध्य बिना छल कपट के आपने किए हैं, और आपने ऐसे शुद्ध सेवा की है जो कि बिना कोई छल कपट से है, इसलिए मैं ये स्वीकार करता हूं कि अगर कई वर्षों तक, देवताओं के उम्र के वर्षों तक भी मैंने अगर मैं आपका ऋण चुकाते रहा, फिर भी मैं पूरी तरह से चुका नहीं पाऊंगा। आपने मेरे लिए आपके परिवार के बंधन भी काट दिए, इसलिए मेरे पास अब आपका ऋण चुकाने के लिए कोई नहीं, कोई सामग्री नहीं है, कोई धन नहीं है। इसलिए कृपया केवल आपके जो किए हुए कार्य हैं उन्हीं से आप संतुष्ट रहिए, आपकी सेवा से ही आप संतुष्ट रहिए। कई बार भक्तों में यह भावना आती है कि अरे मैंने भगवान के लिए इतना कुछ किया, लेकिन देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरे बिजनेस में इतना, व्यवसाय में इतना नुकसान हुआ, या मेरे घर में यह तकलीफ शुरू हो गई, या मेरी यह समस्या खड़ी हो गई। तो भक्ति की भावना मतलब कुछ इसके, हमारे भक्ति के बदले में कुछ चाहना नहीं भगवान से। ऐसे नहीं कि हम निराश हो जाएं कि मैंने इतनी सेवा की और भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं। तो भगवान के श्रेष्ठ भक्त गोपिन के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि हमारी भावना कैसे होनी चाहिए। हमारा एक सौभाग्य है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का मौका मिला है, और इस मौके का पूरा फायदा उठाने का मतलब है कि सही भावना को स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि सेवा करके फिर हम पश्चाताप करते हैं, अरे मैंने क्यों भगवान की सेवा की, इससे अच्छा मैं और बिजनेस पे समय डालता, कुछ कमा लेता पैसे। नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं गोपियों को, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया भगवान कृष्ण के लिए, समाज में भी उनका बुरा नाम हो सकता था, क्योंकि अपने पति को, अपने सास ससुर को उन्होंने त्याग दिया, अपने बच्चों को त्याग दिया, और ऐसे कोई अगर महिला करती है तो समाज में उसका नाम खराब हो जाता है, तो महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन गोपियों ने अपना नाम खराब करने के लिए भी पीछे हटे नहीं, वो आगे चलते गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने मेरे लिए सब कुछ किया, इसलिए मैं कुछ नहीं दे सकता, इसलिए आपके किए हुए कर्म ही आपको संतुष्ट करें, यही आपका भेंट है, आपके लिए उपहार है, इससे आप संतुष्ट रहिए। तो हमारी भक्ति ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर कोई भक्त हमसे कुछ कहे, हमको अच्छा नहीं लगा, हम भक्ति छोड़ देते हैं, नहीं, ये भी ठीक नहीं। कोई कष्ट हो गया जीवन में, हम भक्ति छोड़ देते हैं, नहीं। हम जो आते हैं, भगवान हमको मौका देते हैं भक्ति करने के लिए, बस यही हमारा पुरस्कार है कि भगवान ने हमको संधि सेवा का मौका दिया है, यही सबसे बड़ी चीज है, सबसे मूल सिद्धांत। इस बात को हमारे हृदय में अग्नि के अक्षरों में हमें लिखवा देना चाहिए। जो सच्चा भक्त होता है वो हमेशा शिकायत की भावना में नहीं रहता, जो सही भावना के भक्त नहीं होते वो शिकायत करते रहते हैं, ये गलती है, ये गलती है, ये समस्या है, वो है, उस भक्त में ये है, ये है। लेकिन सही भावना मतलब गोपियों की तरह रहना, और वो है कि कोई शिकायत नहीं, ठीक है, भगवान जो हमारे साथ करते हैं ठीक है। आशिष्य वापादरतम विनष्टुमाम, जो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य शिक्षाष्टकम के आखिरी श्लोक में कहते हैं कि चाहे भगवान हमें टुकराएं या स्वीकार करें, लेकिन हम हमेशा उनकी सेवा में रहेंगे, ये हमारी भावना होनी चाहिए। इस भावना की वजह से ही भगवान अपने आप को गोपियों के प्रति बेच डालते हैं। और फिर आगे गोपियों का प्रेम कितना श्रेष्ठ है उसके बारे में रामानंद राय वर्णन करते हैं। यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य रधुर्य व्रज देवी संग पार बाराय माधुर्य, यद्यपि हालांकि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य रधुर्य, हालांकि कृष्ण का सौंदर्य साधारणतः भी माधुर्य की चरम सीमा है, फिर भी व्रज देवी संग तार बाराय माधुर्य, लेकिन जब श्री कृष्ण व्रज सुंदरी या जो गोपियां हैं उनके बीच में रहते हैं तो श्री कृष्ण का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। तो वो गोपियों का श्रेय है। जैसे जब भक्त इस्कॉन में आते हैं पहले उदास चेहरा उनका रहता है, जब इस्कॉन में आते हैं तो हंसमुख रहते हैं एकदम। जब प्रभुपाद जी पहले अमेरिका में गए और उनके शिष्य बने, कई लोग भक्त बने जो कि पहले हिप्पी हुआ करते थे, लंबे लंबे बाल, गंदे शरीर, चेहरे में कोई उजाला नहीं, कोई सुख नहीं, तरह तरह की बुरी आदतें, और जब वो भक्त बने और फिर उनके चेहरे में तेज आ गया, एक खुशी आ गई उनके चेहरे में, और सभी लोग जो प्रभुपाद के पास आते थे कहते थे कि आपके शिष्य कितने खुश लग रहे हैं, इतना तेज है उनके शरीर के ऊपर। तो ये श्रेय प्रभुपाद को गया क्योंकि प्रभुपाद उनको कृष्ण भक्ति में लगाया और उनके चेहरे पर एक मुस्कान, एक खुशी, एक तेज आ गया, एक प्रकाश आ गया। तो जब चेहरे में खुशी आती है, तेज आता, हम समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति में बहुत आनंद ले रहा है। तो श्रेय जाता है कृष्ण भगवान को कि कृष्ण की भक्ति करने से देखो कितना इनका चेहरा खिल उठा है। उसी प्रकार से गोपियों को श्रेय जाता है कि जब श्री कृष्ण उनके बीच में रहते हैं तो उनका चेहरा खिल आता है और उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे ये हिप्पी लोग पहले कितने कुरूप थे, सब गंदे गंदे कपड़े वगैरह, अब देखो कितने सुंदर लगते हैं, एक से एक बढ़कर, ऐसे लगता है कि सब यहां पर स्वर्ग के देवी देवता बैठे मेरे साथ में, इतने सुंदर लगते हैं। तो अन्य जो होते हैं वो कृष्ण भक्ति करके और सुंदर हो जाते हैं, तेजस्वी हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण गोपियों के संग में आके और सुंदर बढ़ जाते हैं। हालांकि साधारण अवस्था में भी श्री कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य की चरम सीमा है। और फिर रामानंद राय एक और सुंदर संस्कृत का श्लोक कहते हैं, तत्राचे सुशुभेताभि भगवान देवके सुतः मध्ये मणिनां कैमानां महामरकतो यथा। तत्र अति सुशुभे ताभि, हालांकि श्री कृष्ण बहुत सुंदर रहते हैं, ताभि मतलब उनके बीच, लेकिन अभी क्या है, अति सुशुभे, अति सुंदर लग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान देवकी सुतः। तो देवकी सुतः श्री कृष्ण जो कि भगवान है, किनके बीच में जाकर बिल्कुल सुंदर दिखने लगे, मध्य मणिनाम हरिमानाम महामरकतो यथा, वो गोपियों के बीच में जाके ऐसे और भी सुंदर लगने लगे कि मानो एक मणि जो है, जो मरकत मणि, एक विशेष प्रकार की बहुत सुंदर मणि होते हैं जिसको महामरकत कहते हैं, ये मरकत है, मरकट नहीं, मरकट मतलब बंदर, मरकट, लेकिन ये मरकत, ये बहुत सुंदर मणि है। और इस मणि, ये मणि के आजू बाजू अगर ये घिरा हुआ है सोने से तो कितना सुंदर लगता है, ये मरकत मणि और सोना। तो श्री कृष्ण ऐसे ही लग रहे थे जब वो गोपियों के बीच में गए थे, उनका सौंदर्य और भी बढ़ गया। प्रभु को है ए साध्य यदि सुनिश्चय कृपा करो कहो यदि आगे कुछ है, ये अवश्य साध्य अवधि, ये परिपूर्णता की सीमा है, लेकिन फिर भी कृपा कीजिए मेरे ऊपर, इससे आगे भी अगर और कुछ है तो कुछ बोलिए हमको। चैतन्य महाप्रभु को ऊपर 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 खींचते जा रहे थे। तो देखिए सीधे कहां से शुरू हुई बात, शुरू हुई थी वर्णाश्रमाचारवता, पुरुष अपने वर्णाश्रम धर्म के कार्यों को करना स्वधर्माचरण से, लेते लेते ऊपर आते आते पांचों रसों को पार करते हुए माधुर रस तक आए हैं, और अब बोल रहे हैं कि माधुर रस से भी ऊपर जाइए। अरे तो रामानंद राय अभी उनका वो क्या बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। राय कहे इहर आगे पूछे है न जाने, अतो दिन नहीं जाने आछा है भुवने, आज तक इस दिन तक मैं ऐसे कोई व्यक्ति को नहीं जानता हूं जो कि इस स्तर के आगे भी मुझे कोई प्रश्न कर सके, लेकिन आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझे कह रहे हैं कि इस स्तर से भी ऊपर जाओ। तो फिर आगे रामानंद राय कहने लगे
इहार मध्यराधार प्रेम साध्य शिरोमणि वह महिमा सर्वशास्त्र ते वाखानी।
इहार मध्य मतलब इन सब गोपी लीला के बीच में, गोपियों के बीच में राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, तो इस परिपूर्णता की शिरोमणि है श्रीमती राधारानी का प्रेम। जहां महिमा सर्व शास्त्र पे वखाने, जिनकी महिमा सारे शास्त्रों में वर्णित है।
यथा राधा प्रिया कृष्ण तस्यः कुण्डं प्रियं तथा सर्वलोकेषु सैवैका विष्णौ अत्यंत वल्लभाः।
यथा राधा प्रिया विष्णु तस्यः कुण्डं प्रियं तथा, तो यह एक संस्कृत श्लोक में जो कि पद्म पुराण से है और जो कि श्री रूप गोस्वामी के लघु भागवतामृत में भी जिसका उल्लेख आता है, इसमें रामानंद राय कहते हैं जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी विष्णु या श्री कृष्ण की प्रिया है, बहुत प्रिय है, उसी प्रकार से उनका कुंड उनको बहुत प्रिय है। तस्याः कुंडं प्रियं तथा, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का कुंड भी, जो राधा कुंड है, वो भी श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। सर्वदेवेषु सा एका विष्णु अत्यंत वल्लभा, सारे गोपियों में से ये सबसे अत्यंत विष्णु वल्लभा, सबसे प्रिय है भगवान श्री कृष्ण के श्रीमती राधा रानी। तो यहां ये श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ गोपी है, सबसे प्रिय है श्री कृष्ण की, उस प्रकार ये राधा कुंड भी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। राधा कुंड की महिमा तो आप सब जानते हैं, आप सब भक्तों में से कितने भक्तों ने राधा कुंड में स्नान किया है गोवर्धन के पास, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है राधा कुंड। श्री रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में कहते हैं कि यह भौतिक जगत से श्रेष्ठ है वैकुंठ, वैकुंठ श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु वैकुंठ जगत से श्रेष्ठ मथुरा धाम है, क्योंकि मथुरा धाम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की। लेकिन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से धारण किया था और गोवर्धन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कई सुंदर लीलाएं किए। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है श्री राधा कुंड, जो कि वास्तव में राधा कृष्ण की लीला और प्रेम का तरल रूप है, अमृतमय कुंड है ये। और जो व्यक्ति इस कुंड के तट में रहकर राधा कृष्ण की सेवा कर सकता है वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है इस सारे सृष्टि में, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में। तो खैर यहां पे राय रामानंद अब श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, सारे शास्त्रों से वो प्रमाण दे रहे हैं। और फिर आगे वो कहते हैं, इस श्लोक को शायद आपने सुना होगा,
अनुराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यान अनुरह।
वो उस समय की बात है जबकि श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रासलीला कर रहे थे और गोपियों को छोड़कर तुरंत एक अकस्मात श्री कृष्ण ओझल हो गए, अदृश्य हो गए, कहीं चले गए। तो उस समय गोपियां परस्पर बातचीत कर रही थी और उनमें से एक गोपियों ने ये एक श्लोक कहा और वो कहने लगी कि हे सखियां, जिस गोपी ने श्री कृष्ण को हमसे दूर ले जाकर एक एकांत स्थान में उनकी सेवा की है वो वास्तव में श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा उसने सेवा की होगी भगवान श्री कृष्ण की, सबसे ज्यादा प्रिय होगी भगवान कृष्ण की। प्रिय तो अयम अनुगत रहा, एक विशेष स्थान में आकर उनकी सेवा की, क्योंकि प्रिय तो अयम सबसे ज्यादा प्रेम इनका होगा, यन्न विहाय गोविंद, इसलिए गोविंद ने हमको त्याग कर उसका संग स्वीकार किया है। तो इस श्लोक में वास्तव में श्रीमती राधा रानी का उल्लेख है। हालांकि राधा श्रीमती राधारानी या राधिका, ये नाम स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में नहीं आता है, परंतु इस श्लोक में राधारानी का नाम गुप्त रूप में आता है। अनुय आराधित, ये इस श्लोक की पहली पंक्ति है। अनुय आराधितो नूनम, अनुय आराधितो मतलब अनुय आराधित, अनुय मतलब जिसके द्वारा और आराधित मतलब पूजित। तो श्रीमती राधारानी जो सबसे ऊंची भक्त है भगवान श्री कृष्ण की, वो है जिनके द्वारा श्री कृष्ण पूजित है, अनिल आराधित। इसलिए यहां पर गुप्त रूप में श्रीमती राधारानी का नाम छुपा हुआ है। तो गुप्त रूप में क्यों राधारानी का नाम दिया हुआ है यहां पर, स्पष्ट रूप से क्यों नहीं उच्चारण है? क्योंकि परीक्षित महाराज को केवल 7 दिन थे जीने के लिए, और अब सुखदेव महाराज दशम स्कंद तक पहुंच गए थे, अब दशम स्कंद में भी और बहुत कुछ वर्णन करना था। अगर उन्होंने राधा रानी का नाम लिया होता तो वो भी राधा के लीला में गोलोक वृंदावन में उनके शुक हैं, उनके तोते हैं, उनके लीला में भाग लेते हैं, तो वो ऐसे राधा रानी के नाम के उच्चारण से भाव विभोर होकर बेहोश होकर गिर पड़ते, और गिर पड़ते तो न जाने कब उनका होश, बाहरी होश फिर से आ जाता। और इतना समय तो था नहीं परीक्षित महाराज के साथ। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि अगर मैं भाव विभोर होकर गिर पड़ूंगा तो फिर परीक्षित महाराज का क्या होगा, भागवत का क्या होगा? तो उन्हें जानबूझकर श्रीमती राधारानी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया, गुप्त रूप से अनिल आराधित। तो आराधित राधा, तो इसमें से आराधित शब्द से राधा आया। इस तरह से उन्होंने राधारानी का नाम लिया भी। तो ये श्लोक रामानंद राय ने कहा, फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो माधुर्य रस का इतना काफी नहीं था, माधुर्य रस के भीतर वो राधा रानी के बारे में सुनना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, इसलिए अब बहुत खुश हुए। प्रभु कहो आगे कहो सुनी तो पाई सुखे, अपूर्वामृत नदी रहे तुम्हारा मुखे। प्रभु कहे आगे कहो सुनी तो पाई सुखे, और बोलो ये बातें सुन के मुझे बहुत सुख हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हारे मुखे, एक अपूर्व अमृत की नदी बह रही है तुम्हारे मुख से। जब अब तुमने ये श्रीमती राधारानी की बातें की हैं, गोपियों के माधुर रस की बात की है, ये अमृत की धारा बह रही है, धारा नहीं नदी बह रही है तुम्हारे मुख से।
चोरी करी राधा के नील गोप गणे डरे, अन्य सहेले प्रेम गाधा का निस्पुरे।
रासलीला के समय जब श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ लीला नहीं की थी अन्य गोपियों की उपस्थिति से, क्योंकि अन्यों की उपस्थिति में उनको थोड़ा वो पीछे हट गए, तो उस समय वो जो राधा कृष्ण के बीच में जो शुद्ध लादिनी शक्ति का प्रेम है वो उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उनको चुरा ले लिया और गोपियों के बीच में से निकल गए। फिर राधा लागी गोपी यदि साक्षात करे त्याग, तब जानी राधा कृष्ण गाढ़ अनुराग। अगर श्री कृष्ण ने अन्य सारे गोपियों का संग त्याग किया केवल श्रीमती राधा रानी के लिए, तो हम ये समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम श्रीमती राधा रानी के प्रति कितना तीव्र है। फिर राय रामानंद कहने लगे, राय कहे तो बे सुनो प्रेम रही तू जगत राधा प्रेम नहीं कर उपमा। कि अब सुनिए श्रीमती राधा रानी के प्रेम का वर्णन, राधा रानी के प्रेम की तुलना इस भौतिक जगत में कहीं नहीं हो सकता है। तो जब राधा रानी ने देखा कि अरे श्री कृष्ण मेरे साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जैसे अन्य गोपियों के साथ में व्यवहार करते हैं उसी तरह से मेरे साथ भी व्यवहार कर रहे हैं, मैं विशेष गोपी हूं, मेरे साथ विशेष लीला होनी चाहिए, लेकिन ये अन्यों के साथ कैसे हुआ? तो ये एक मान है, इसका नकल हमें नहीं करना है कि अरे मुझे विशेष सम्मान क्यों नहीं मिला, विशेष क्यों स्थान नहीं मिला, मुझे विशेष सेवा क्यों नहीं मिली, भगवान ने मेरे साथ नहीं। हम राधा रानी नहीं है, राधा रानी और कृष्ण के बीच में ये जो मान और तथा कथित घमंड का प्राकट्य होता है, ये राधा कृष्ण प्रेम की चरम सीमा का एक प्रदर्शन है, ये मान है, दिव्य मान है ये। तो उस समय राधा रानी को गुस्सा आया, क्रोध आया, दिव्य क्रोध, और वो सारे गोपियों को और श्री कृष्ण को भी त्याग कर बाहर चली गई। और जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब राधा रानी नहीं है तो फिर वो बड़े दुखी हो गए, और इधर कहां पर है। और इस समय राय रामानंद ने जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से दो श्लोकों का उच्चारण किया, जिनमें से एक यहां पर आप देख सकते हैं। ये दो श्लोक वास्तव में बहुत प्रसिद्ध हैं गौड़ीय वैष्णवों के बीच में, तो कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। कंसारो अपि संसारो वासना बद्ध शृंखलां राधाम आधाय हृदये तत्याव्रज सुंदरी। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में बसा लिया, क्योंकि वो उसके साथ नृत्य करना चाहते थे। इस तरह उन्होंने रास नृत्य मंडल को तथा व्रज की अन्य सुंदरियों का साथ छोड़ दिया। कंस आरी, आरी मतलब, आरी मतलब शत्रु, तो कंस के अरे कृष्ण, हालांकि संसार वासना बद्ध, संसार वासना मतलब हमारे जैसे संसार वासना नहीं, मतलब वो रास लीला करना चाहते थे। बद्ध श्रृंखलान, क्योंकि वो ऐसे लीलाओं से बद्ध होते हैं, उनको बहुत प्रिय हैं ऐसी लीलाएं। राधाम आधाय हृदय, तो उन्होंने अपने हृदय में श्रीमती राधा रानी को बसा लिया। तत्याज व्रज सुंदरी, और उन्होंने त्याग दिया व्रज सुंदरियों, सुंदरियों को, गोपियों को त्याग दिया। तो ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, और इसके आगे वाला श्लोक भी है जो गीत गोविंद का है। इतस्ततस्ता मनुष्य राधिका अनंग बाण व्रण खिन्न मानस कृतानुताप सकलिंद नंदिनी तटांत कुंजे विषसाद माधव। जयदेव गोस्वामी कहते हैं, कामदेव के बाणों से विद्ध होकर तथा राधारानी के साथ किए गए दुर्व्यवहार से दुखी होकर माधव श्रीमती राधारानी को यमुना नदी के किनारे किनारे खोजने लगे, किंतु जब उन्हें नहीं पा सके तो वे वृंदावन के कुंजों में घुसकर विलाप करने लगे। तो वो कृष्ण जो सबको आनंद देते हैं, जिनके शरण में जाकर ही हम संसार की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, अब यही श्री कृष्ण दुखी हो गए हैं, दुखी होकर वृंदावन के कुंजों में विलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि अरे मैंने श्रीमती राधारानी के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया, अन्य गोपियों के साथ जैसे व्यवहार किया वैसे ही किया, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, अन्याय हुआ, इसलिए श्रीमती राधारानी दुखी होकर अपने मान का प्रदर्शन करके वो चली गई, और अब मैं ढूंढते ढूंढते उनको नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो बहुत दुखी हो गए। तो ये दो श्लोक गीत गोविंद के बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इसका तात्पर्य जो आगे समझाने वाले हैं राय रामानंद। ए दो श्लोक अर्थ विचार ले जाने, विचारे तो उठे जानो अमृत रखने। केवल इन दो श्लोकों का अर्थ का विचार करने से ये ऐसे है कि मानो एक अमृत के खान को आपने छोड़ दिया। एक खान में क्या होता है, बहुत सारे, जैसे सोने का खान होता है, किसी धातु का खान होता है, बहुत सारा उसमें धातु होता है। तो यह अमृत का खान, और अगर इसको छोड़ दिया, जैसे बंधारे होते हैं, बंद होते हैं पानी को, उसको छोड़ दिया तो क्या होता है, पानी बहने लगता है बड़े जोर से। तो राय रामानंद कह रहे हैं कि ये इन दो श्लोकों को अच्छी तरह से समझने से वैसे ऐसे है कि मानो अमृत के खान को खोल दिया हो। शतकोटि गोपी संगे रास विलास
तार मध्य एक मूर्ति रहे राधा पाश। हालांकि श्री कृष्ण हजारों हजारों गोपियों के बीच में थे रासलीला के समय, और उन्होंने फिर भी श्रीमती राधारानी के साथ वो अकेले ही रहे। इसका तात्पर्य यह है कि जब यहां रासलीला की तस्वीर है, क्या कहीं आपने देखा है ना वो तस्वीर, श्री कृष्ण हैं, अनेक गोपियां हैं, तो कृष्ण एक गोपी, फिर कृष्ण एक गोपी, कृष्ण गोपी, ऐसे एक पूर्ण चक्र है। तो कृष्ण कितने गोपियों के साथ में एक साथ थे? दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण। तो हरेक गोपी के पास फिर कृष्ण दोनों तरफ, लेकिन राधारानी के साथ कृष्ण अकेले थे। अन्य गोपियों के साथ में क्या है कि कृष्ण जिनके साथ वो नृत्य कर रहे थे वो कृष्ण दूसरे गोपी के साथ भी थे, लेकिन यहां पर रासलीला में श्रीमती राधारानी के साथ अकेले केवल कृष्ण थे, ऐसे श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। हालांकि ऐसे था, हालांकि श्री कृष्ण अकेले केवल राधारानी के साथ थे, बल्कि वो दो गोपियों के बीच अन्य गोपियों के बीच में थे, फिर भी राधारानी असंतुष्ट रही। साधारण प्रेम देखे सर्वत्र समता, राधारानी तुल प्रेम हो लो वामता। राधारानी का कुटुंब प्रेम इसको देखकर, हालांकि भगवान कृष्ण सर्वसाधारण सामान्य दृष्टि से सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन श्रीमती राधारानी के मान उनके कुटुंब प्रेम से एक विशेष चीज उत्पन्न हो गई। और उस समय फिर राय रामानंद कहते हैं कि राधा कृष्ण के प्रेम जो है वो, या जो सच्चा प्रेम होता है माधुर रस में, वो एक सांप की तरह जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और उसमें कभी मान आता है, कभी क्रोध आता है, कभी कुछ, जैसे कि संसार में भी देखा जाता है, हर एक संबंध में कभी कभी गुस्सा हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी अति प्रेम हो जाता है, कभी कोमल हो जाता है, कभी उग्र हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये एक विकृत प्रतिबिंब है। और इस पर आगे राय रामानंद कहते हैं कि जब श्रीमती राधारानी रासलीला को छोड़कर चली गई तो श्री कृष्ण बड़े उदास हो गए, क्योंकि वो उनको देख नहीं पाया, श्रीमती राधारानी को। हालांकि रासलीला में भगवान श्री कृष्ण एक दृष्टि से तो पूरी तरह से संतुष्ट है। सम्यक सार वासना कृष्ण रासलीला, पूरी तरह से ये रासलीला में सार व्यवस्था है भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। परंतु रासलीला वासनाते राधिका श्रृंखला, राधिका वो श्रृंखला है, वो जंजीर है जो कि कृष्ण को रासलीला से बांध के रखती है। कहा भी रासलीला नहीं भाई छते, मंडले छाड़िया गलो राधा अन्वेषिते। वो रासलीला भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रकाशित नहीं होता अगर श्रीमती राधारानी उस रासलीला में नहीं है, इसलिए उन्होंने सारे रास मंडल को त्याग दिया और राधारानी के पीछे पीछे उनको ढूंढने के लिए चले गए। और जब वो ढूंढते ढूंढते राधारानी को ढूंढ नहीं पाए तो फिर वो बड़े मूर्छित होकर, बड़े दुखी होकर वहां पर एक जगह, एक निवांत, एक एकांत स्थान में बैठ गए। तो राय रामानंद कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की इच्छाएं हजारों लाखों लाखों गोपियों के बीच में भी संतुष्ट नहीं हुई, तो हम समझ सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि श्रीमती राधारानी की योग्यता क्या है, कि उनके गुण क्या है, कि जो श्रीमती राधारानी इतने सारे गोपियों के बीच में श्री कृष्ण को रहते हुए संतुष्ट नहीं होती है, लेकिन अकेली वो रहती है तो संतुष्ट करती है, तो उनके गुण क्या होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु उसको इस बात को सुनकर कहने लगे कि जिस कारण से मैं तुम्हारे पास आया था वो अब पूर्ण हो गया, अब मैं जीवन के परम लक्ष्य को जान सका हूं और कैसे इसको प्राप्त करना इसको भी जान सका हूं, लेकिन फिर भी और भी कुछ है आगे, और भी बताते जाओ। किस तरह से श्रीमती राधा और कृष्ण के दिव्य गुण हैं इनका वर्णन करते जाओ। वैसे ये संवाद इतना सुंदर है और इतना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए कि इसको समझना, इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, परंतु संवाद अब काफी लंबा है, इसलिए इतना समय हमारे पास आज नहीं है। लेकिन जब चैतन्य यहीं पर कथा थोड़ी देर में समाप्त करेंगे,
कृपया आप ये सब पढ़िएगा, चैतन्य चरितामृत है, मध्य लीला में राय रामानंद के साथ जो संवाद है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत गौर वैष्णव दर्शन के आप यहां पे पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को, उनके उपदेशों को अगर हम समझेंगे तो हम सारे परम सत्य को समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के बिना कोई गति नहीं है, विशेष करके कलयुग में। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा कि कृपया मुझे ये समझा दो, तो राय रामानंद ने कहा, राय कहे यह आमी किछु न जानी, तुम जो कहो सेई कहि आमी वाणी। मैं तो उन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं जो कह रहा हूं वो केवल वही है जो आप मुझसे कहलवाते हैं। तुम्हारा शिक्षाए पौड़ी जानो सुखपाठ, साक्षात ईश्वर तुम के बुझे तुम्हारा नाट। मैं केवल सुखपाठ मतलब एक तोते की तरह मैं बोल रहा हूं, और जो आपने मुझे सिखाया है, अंदर से प्रेरित कराया है, वो भी मैं बोल रहा हूं। साक्षात ईश्वर तुम्हें, आप तो साक्षात भगवान है, क्यों बुझे तुम्हारा नाट। आपका यह नाटक है कि मुझसे, मेरे मुख के माध्यम से आप ये सब ऊंचे ऊंचे तप प्रकट कराना चाहते हैं, ये आपकी लीला है, कौन समझ सकता है इसको। हृदय प्रेरणा कर जिह्वाए कहो वाणी, की कहो ये भाला मंद किछु न जानी। हृदय के अंदर से आप मुझे प्रेरित करते हैं और इसीलिए मैं अपनी जिह्वा से कुछ बोल सकता हूं, लेकिन भाला मंद किछु न जानी, मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, अच्छा बुरा बोल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप जो अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूं। तो महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी, भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादी भाषी। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, मायावादी आमी तो सन्यासी, मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, भक्ति तत्व नहीं जानी, भक्ति तत्व के बारे में मैं क्या जानू, मैं तो मायावाद के समुद्र में बह रहा हूं, मैं तो तैर रहा हूं। सार्वभौम संगम रे मन निर्मल होइलो, कृष्ण भक्ति तत्व कहो तहारा पूछिलो। केवल सार्वभौम भट्टाचार्य के संग से मेरा मन थोड़ा निर्मल हो गया, और इसलिए मैंने उनसे पूछा कि कृष्ण भक्ति के तत्व मुझे समझाओ। तेनो कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तेनो नहीं ए था। सार्वभौम भट्टाचार्य मुझसे कहने लगा कि मुझे भी ये कृष्ण कथा नहीं मालूम, ये केवल रामानंद राय इसको जानता है जो कि यहां पर उपस्थित नहीं है। तुम्हारा ठानी आई लाना तुम्हारा महिमा सुनिया, तुम मोर स्तुत करो सन्यासी जानिया। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, तुम्हारा गुणगान सुनकर मैं तुम्हारे यहां आया हूं, लेकिन उनका तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा जो हम सबको पाठ करना चाहिए और जिसका मतलब भी हम सबको जानना चाहिए। कि बाबू प्रतिभान्यासी शूद्र के निमय, जो कृष्ण तत्व वेत्ता श्री गुरु है। कि बा विप्र, अगर कोई विप्र है या ब्राह्मण है, कि बा न्यासी या कोई सन्यासी है, शूद्र के निमय या कोई शूद्र भी हो, जो कृष्ण तत्व वेत्ता, जो कृष्ण तत्व को जानता है, श्री गुरु है, वही गुरु है। गुरु तत्व मतलब गुरु कौन हो सकता है? ब्राह्मण हो सकता है? जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वही गुरु हो सकता है? नहीं। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ हो परंतु कृष्ण को नहीं जानता, तो वो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, खुद का उद्धार नहीं कर पाएगा, तो दूसरों के लिए गुरु क्या बनेगा। लेकिन अगर कोई शुद्ध कुल में जन्म लिया हुआ है लेकिन वो कृष्ण तत्व को जानता है, जय कृष्ण तत्व वेत्ता श्री गुरु है, तो वो गुरु हो सकता है, सारे जगत का उद्धार कर सकता है। तो ये हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण वैष्णव सिद्धांत है। सन्यासी बोलुआ मोरे ना करू हे वंशन, कृष्ण राधा तत्व को ही पूर्ण कर मन। तो मुझे धोखा मत देना रामानंद राय, मैं सन्यासी हूं कहकर तुमसे साफ से सब सीख रहा हूं, नहीं नहीं, मुझे मेरा मन संतुष्ट करो, राधा कृष्ण तत्व के बारे में मुझे पूरी तरह से बताओ। फिर रामानंद कहने लगे, राय कहे आमी न तो तुम्हें सूत्रधार, जय मत नाचाओ तैसे चाहे नाचीदार। मैं तो एक नट हूं, कठपुतली हूं, और आप सूत्रधार हैं, कठपुतली के जो सूत्र पकड़ने वाले व्यक्ति आप हैं, जिस तरह से आप मुझे नचाएंगे वैसे मैं नाचूंगा। મોર જીહવા વીણા યંત્ર તુમિ વીણા ધારી તુમારા મનો જય ઉઠેતા હિ ઉચ્ચારી. મેરા જીહવા જો હૈ વો એક વીણા કે સમાન હૈ ઓર આપ વીણા ધારી હૈ વીણા બજાને વાલે હૈ તો જો ભી મેરા જીહવા કહે રહા હૈ વો આપકી ઈચ્છા કે અનુસાર હો રહા હૈ. ઓર ફિર રામાનંદ રાય ને ભગવાન કૃષ્ણ કે તત્વ કા વર્ણન કિયા और आगे चल के श्रीमती राधा रानी का तत्व का वर्णन किया और यह वर्णन किया कि किस तरह से राधा कृष्ण की लीला वास्तव में बहुत विशेष है. जो राधा रानी की लीला तत्व को समझ सकता है राधा कृष्ण तत्व को वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली है. इस प्रकार राय रामानंद ने चैतन्य महाप्रभु को बहुत कुछ समझाया श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बारे में. और चैतन्य महाप्रभु वास्तव में अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं. वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को ये सब कुछ मालूम है. वह स्वयं श्री कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हैं. परंतु इस समय वो रामानंद राय का गुणगान कराना चाहते हैं क्योंकि अब चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम सब रामानंद राय के मुख सुन रहे हैं राधा कृष्ण तत्व. नहीं तो हम रामानंद राय के बारे में कहां चर्चा करते. तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनेक भक्तों के माध्यम से अनेक अनेक तत्वों का कथा जो है वो करवाया. हरिदास ठाकुर के मुख से नाम तत्व और रस तत्व रूप गोस्वामी के माध्यम से और इस प्रकार से राधा कृष्ण तत्व उन्होंने रामानंद राय के मुख से करवा दिया. तो इससे हम जान सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के अति प्रिय है कि माधुर्य लीला में से भी सबसे श्रेष्ठ जो प्रेम का संबंध है वो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का है. और ये बिल्कुल भौतिक नहीं है. राधा कृष्ण प्रणव विकृति लादिनी शक्ति रस्मात. तो ये लादिनी शक्ति का एक परिवर्तन है, एक प्राकट्य है. जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति. ये बहिरंगा शक्ति ये गुण त्रिगुणमयी शक्ति है, सत्व रजस तमस भौतिक शक्ति जिसके चंगुल में हम सब यहां पर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से हम श्री कृष्ण को जान नहीं पा रहे हैं. तो ये बहिरंगा शक्ति है. लेकिन इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति. उनकी आध्यात्मिक शक्ति एक है परंतु ये शक्ति अलग अलग कार्य करती है और जैसे वो कार्य करती है वो अलग अलग उसको नाम दिए जाते हैं. जैसे संधिनी शक्ति है, संवित शक्ति है और लादिनी शक्ति है. तो लादिनी शक्ति भगवान की आनंद की शक्ति है, दिव्य आनंद की शक्ति जिसके द्वारा श्री कृष्ण स्वयं दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और अपने भक्तों को भी दिव्य आनंद दिलाते हैं. तो हम जब भगवान कृष्ण की भक्ति में कभी कभी इस आनंद का झलक देखते हैं, इसका अनुभव होता है, तो हमें जानना चाहिए कि लादिनी शक्ति का एक बूंद मात्र, बूंद का भी एक बूंद, बूंद का कण ने हमने अनुभव किया है. तो यह है अल्लादिनी शक्ति और श्रीमती राधा रानी इस लादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपी हैं, स्वरूपिणी हैं. इसलिए श्रीमती राधा रानी को जीवात्मा नहीं है जैसे कि कई लोग सोचते हैं. राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति. और श्री कृष्ण शक्तिमान है. शक्ति और शक्तिमान हमेशा साथ में रहते हैं. इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में भी ये हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, हरे मतलब राधा रानी, राधा रानी को संबोधित करता है. तो हम राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा हमें अपनी उनकी सेवा में लगाए. ये है हरे कृष्ण मंत्र का मतलब कि हम राधा कृष्ण से कह रहे हैं कि सदैव आपके चरण कमलों में आप हमें रखिए, आपकी सेवा में हमेशा रखिए, ये आपकी बड़ी कृपा हम सबके ऊपर होगी. तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करेंगे तो इसी भाव से हमें करना है. आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है. राधा रानी श्री कृष्ण की अनुकंपा की मूर्ति है. श्री कृष्ण कभी कभी थोड़ा कठोर भी हो सकते हैं भला, लेकिन श्रीमती राधा रानी नहीं. इसलिए जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट शॉर्टकट लेते हैं, वो श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं और श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं. और फिर श्रीमती राधा रानी जब किसी के ऊपर कृपा करती हैं तो कृष्ण को कृपा देना ही पड़ता है.
जब पत्नी कहती है कि देखो ये कुछ बोल रहे हैं तो पति को सुनना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं। तो किसी प्रकार से राधा रानी जब कुछ बोलती है तो कृष्ण को सुनना ही पड़ता है। ये भक्त है बेलगाम में वहां राधा गोकुलानंद मंदिर में, वो मुझे बहुत प्रसन्न किया है उसने, तो आप उसके ऊपर कृपा कर दो। नहीं उसने अभी तक वो नहीं किया ठीक से, नहीं नहीं आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है आप देंगे, कोई झगड़ा नहीं चाहिए, देंगे देंगे जरूर देंगे, जरूर देंगे, कृपा देंगे। हालांकि थोड़े बहुत दोष हो सकते हैं भक्त में, लेकिन राधा रानी प्रसन्न हो गए तो एक बार कृष्ण के पास गए कि कृपा देना, तो उनको देना ही पड़ता है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। और बहुत सी बातें अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन अब समय नहीं, और कभी चर्चा करेंगे। आपके कोई प्रश्न है? हाँ, श्री कृष्ण के बाद में उनका प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जब गोकुल में प्रकट हुए और फिर इधर रावल में, श्रीमती आज शाम को हम चर्चा करेंगे, फिर इधर रावल में वो प्रकट हुए। हम देखते हैं कि अष्टमी, राधाष्टमी जन्माष्टमी के बाद में है ना, तो 15 दिन छोटी हुई ना राधा रानी कृष्ण से, हाँ एक साल पहले नहीं प्राणी के नाम लेने में कोई अपराध है क्या? वैसे राधा रानी बहुत कृपालु हैं, लेकिन जब हम हरे कृष्ण मंत्र कहते हैं तो अपराध है ना, होता है ना। हरे किसका नाम है? राधा रानी का नाम है। तो एक दृष्टि से है वो बहुत कृपालु, लेकिन फिर भी अगर हमने भक्ति भाव से किया तो राधा रानी अवश्य कृपा करती हैं। वृंदावन में तो राधा रानी का ज्यादा महत्व है, इसलिए सब जगह राधे राधे, जय श्री राधे, ऐसे आप जगह जगह पेड़ों के ऊपर दीवारों पर आप ये देखेंगे। कौन सा नाम श्रेष्ठ है, राधा या हरे कृष्ण महामंत्र? अंतर नहीं है दोनों में। जैसे हमने कहा हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, हरे मतलब राधा रानी, तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र कहते हैं तो राधा रानी का नाम इसमें आ ही जाता है। कई ऐसे संप्रदाय हैं जो कि राधा कृष्ण राधा राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ऐसा मंत्र बोलते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण कहने के लिए कहा। वैसे हरे कृष्ण मंत्र में गौड़ी वैष्णव आचार्यों के दृष्टि से यह राम शब्द भी कृष्ण ही है, राधा रमण कृष्ण, राधा में रमण करने वाले कृष्ण, इसलिए हरे कृष्ण। तो इस दृष्टि से जो कृष्ण का मन हरण कर लेती है, ये जो गुण राधा रानी के अंदर है वो श्रेष्ठ है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र कहने के लिए हमें आदेश दिया है। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा। जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं कि कृष्ण भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ है और सत्यम परम धीम ही है, और ऐसे भगवान मतलब इंडक्टेड होते हैं, तो एक्सप्लेन
फिर से कृष्ण।
भगवान जो परम सत्य है जिससे सब कुछ उद्गम होता है, वही गोपियों के साथ मतलब रिलीज हो जाते हैं, तो
यही तो गोपियों के प्रेम की महिमा है कि एक ही चीज है जो कि भगवान से श्रेष्ठ है, वो क्या है? प्रेम है। अन्य इसलिए भगवान का नाम अजित है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वो भगवान को वश में कर सकता है, जैसे माता यशोदा ने किया, बांध लिया कृष्ण को, तो उनसे भी श्रेष्ठ है गोपियों का प्रेम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हालांकि परम सत्य है, लेकिन भक्ति के स्तर पर वो हार जाते हैं गोपियों के प्रेम के सामने, उनका कोई स्थान नहीं रहता। ठीक है, हरे कृष्ण।
कभी श्री वैष्णव संप्रदाय में विष्णु सहस्रनाम का ज्यादा वो लोग महत्व देते हैं, तो पूछा जाता था कि गोपा जी ने विष्णु सहस्रनाम का इंट्रोडक्शन क्यों नहीं किया?
ऐसे नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा, इसके बारे में अवश्य उल्लेख किया है, परंतु ऐसे बताया जाता है कि पूरा एक हजार नाम विष्णु विष्णु का लेने से वो राम का एक नाम लेने के बराबर है। राम राम रमे रामे रमे रामे मनोरमे सहस्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वराणने। सहस्र नाम विष्णु सहस्र नाम एक बार लेंगे मतलब हजार नाम विष्णु के बोलेंगे और राम नाम एक बार बोलेंगे तो बराबर है। तो कोई विष्णु सहस्र नाम बोलना चाहता है तो उसको कितना समय लगेगा, बोलता रहेगा और हम राम कहें बस हो गए। और तीन बार राम नाम बोलने से कृष्ण का एक नाम राम 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 और कृष्ण, तो ये दिव्य गणित। इसलिए जो कृष्ण का नाम बोलेंगे तो 3000 बार विष्णु का नाम लेने के बराबर। तो जो आदमी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेगा तो उसको 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा और हम कृष्ण कहेंगे तो हो गया। लेकिन फिर भी विष्णु सहस्त्र नाम भी पवित्र है, भगवान के ही नाम है, इसलिए इससे भी इसका पाठ करने से भी हृदय शुद्ध होता है। लेकिन कृष्ण नाम में ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्व आकर्षक हैं उनको संबोधित करता है। राधा रानी की कृपा बहुत आवश्यक है, तो राधाष्टमी के दिन आधा दिन को उपवास और जन्माष्टमी के दिन पूरा उपवास, ऐसा क्यों? राधा रानी के जन्मोत्सव पर भी पूरा दिन क्यों नहीं? करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आचार्य ने ऐसे नियम दिया है। साधारणतः जिस समय प्राकट्य होता है उस समय तक उपवास होता है, तो आचार्य ने बताया कि 12 बजे दोपहर तक उपवास है, राधाष्टमी के दिन करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था तो रात के 12 बजे तक उपवास। लेकिन किसी को निर्जल रखना है 12 रात तक तो कोई रोग नहीं उसमें। हाँ जी,
राधा रानी वहां से निकल गई नाराज होकर, तो भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे राधा रानी को ढूंढने के लिए, तब रासलीला बाकी गोपियों से चल रही थी या भगवान ने बोला?
वो सब ठप हो गया ना, जब कृष्ण ही चले गए। हाँ, परंतु उनको मन आनंद नहीं आया। वो रासलीला कब करते हैं? जब श्रीमती राधा रानी वहां पर हैं, जैसे यहां पढ़ा है कि इतने हजारों लाखों गोपियां होने के बाद भी अगर श्रीमती राधा रानी नहीं है तो कृष्ण को रासलीला में आनंद नहीं आता। इसलिए वो गोपियों को त्याग करते हैं, रासमंडल को भी त्याग करते हैं। तो इसलिए रासलीला नहीं रहता, जब श्रीमती राधा रानी चले जाती हैं फिर रासलीला का कोई सवाल नहीं आता। इसलिए राय रामानंद कहते हैं कि देखो श्रीमती राधा रानी का स्थान कितना है, महत्व कितने, क्या गुण है उनके अंदर कि इतने सारे गोपियां होते हुए भी अगर राधा रानी नहीं है तो श्री कृष्ण अन्यों को सबको त्यागते हैं, रासमंडल भी त्यागते हैं, रासलीला को त्यागते हैं। हरे कृष्ण।
बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लक्षण में अभी बता रहे थे, तो इतना सब छोड़ के, घर छोड़ के और बच्चों जैसे जो कुछ परिवार को छोड़ के सब गोपियां भगवान के लिए सेवा कर रहे, लेकिन हमारे समाज में नहीं तो अभी देख रहे हैं कुछ भी ऐसे कठिनाई थोड़ा बहुत सेवा में आ रहा है, तो भक्त लोग हमारे दर्शन कभी होता है तो सब छोड़ के अभी जपा करूं, क्यों है सब करने का, क्यों है सबसे दर्द लेने का, क्या फायदा है, ऐसे भावना आता है जनरली, तो इसके कारण हम छोड़ के हम बैठ जाते, नहीं तो जपा करेंगे ये अच्छा है, ये भावना क्या है, क्योंकि जपा भी एक डिवोशन सर्विस है, तो इसको कैसे समझना चाहिए?
अगर हमने सेवा को सरदर समझ लिया तो फिर हम प्रगति नहीं करेंगे। वो कहानी आप जानते हैं ना, जब कृष्ण को सरदर्द हुआ था और कृष्ण को ठीक करने के लिए सब वैद्य आ गए इधर उधर से और कोई ठीक नहीं कर पाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए एक ही इलाज है और वो है कि मेरे भक्तों की चरण धूली। तो फिर सब गए ढूंढने, नारद मुनि गए ढूंढने के लिए चरण धूली, संतों से भक्तों के पास गए कि श्री कृष्ण को सरदर्द है, आपके चरणों से आप धूली देना। तो श्री कृष्ण अपने सर में लगाएंगे वो सरदर्द ठीक हो जाएगा। तो सारे लोग हैरान हो, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे चरण की धूली श्री कृष्ण के सर के ऊपर, अरे उनकी चरण धूली हमारे सर के ऊपर आना चाहिए, हम अगर ऐसा करेंगे तो नरक में जाएंगे, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो सब ने ऐसा ना मना कर दिया। जब नारद मुनि कृष्ण के पास आए तो कृष्ण ने कहा भी गोपियों के पास जाओ। तो जब गोपियों के पास गए श्री कृष्ण नारद मुनि, तो गोपियों ने सुना श्री कृष्ण को सरदर्द है और उनको इसके लिए एक ही उपाय, हमारे चरणों की धूली है तो ले लो, भर भर के ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो। तो नारद मुनि को आश्चर्य हुआ, अरे क्या आप नहीं जानते कि आपके चरण की धूली अगर आप भगवान के सर के ऊपर डालेंगे आप नरक में जाएंगे। तो गोपियों ने कहा कि हम नरक में जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन श्री कृष्ण को उनका सरदर्द कम हो जाए एक क्षण के लिए भी, उसके लिए हम हमेशा के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि गोपियों के पद चिन्ह में अगर हमें चलना है, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही तो हमारी संप्रदाय है, तो फिर हमें भी सीखना है कि गोपियों की तरह कैसे भगवान के लिए, उनके भक्तों के लिए, भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमें भी सरदर्द स्वीकार करने के लिए, सरदर्द की बात क्या दूर है, गोपियां नरक में जाने के लिए तैयार है। तो जो भक्त जितना सरदर्द स्वीकार करने के लिए तैयार है कृष्ण के लिए, उतना कृष्ण उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि खामखा जानबूझ का सरदर्द कर लेने का, कुछ कष्ट देने का, जानबूझ का कुछ तकलीफ देके फिर सरदर्द ले आने का, अपना ऐसा नहीं। सरदर्द मतलब क्या है कि जिम्मेदारी लेना या सेवा भाव ऐसे रखना। अगर सब सेवा करते हुए कोई भक्त सोचेगा क्या फर्क पड़ता है, मैंने नहीं किया तो करेंगे अन्य भक्त करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो है ना, भगवान तो रहेंगे भगवान ही, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भगवान को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको बहुत फर्क पड़ेगा, हमारी भावना के ऊपर सब कुछ निर्भर है। अगर हमारी ये भावना रही कि यह बहुत बोझ बन गया तो फिर क्या फायदा है। प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति सही तरह से इन ग्रंथों को पढ़ेगा नहीं, सही तरह से हमारे गोपियों ने कैसे भाव किया, भाव को व्यक्त किया है सेवा के लिए, अगर उस सेवा भाव को स्वीकार नहीं करेगा तो वो सोचेगा कि अरे कहां हमको हमारे गुरु महाराज ने अटका दिया, जब बोझ गले में बोझ डाल दिया, हमको रोज सेवा करना है भगवान का, हम ऐसे सोचने लगेंगे, फिर सेवा बोझ बन जाएगा। बोझ नहीं है, ये तो एक अनमोल अवसर है जो करोड़ों करोड़ों सालों जन्मों के बाद हमको मिला है। करोड़ों करोड़ों जीवों में से एक जीव को कृष्ण की सेवा की संधि मिलती है, तो अगर उसको हमने सस्ता लिया तो भगवान हमसे छीन लेंगे उस बात को। तो कभी भी डरना नहीं चाहिए जिम्मेदारी लेने से, लेकिन हां जब भी करना है, हर चीज को अपना समय है, लेकिन जब के नाम पे या इसके नाम पे उसके नाम पे काम चोरी करना, सेवा कम करना, फिर उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जो व्यक्ति सोचता है कि हर एक मौके का उपयोग कैसे करना चाहिए, हमारा पढ़ाई भी हो सकता है, जब भी हो सकता है, सेवा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं नहीं मुझे पढ़ाई करना है, हम नहीं करेंगे ये, सेवा नहीं करेंगे, हमको जब करना भी नहीं करेंगे। लेकिन एक भक्त हमको बता रहे थे, कहे सचिपुत्र प्रभु है इधर, इधर है सचिपुत्र प्रभु अंदर। तो हमको सचिपुत्र प्रभु बता रहे थे कि जब हमको बहुत सेवा रहता है तो हमको जो बीच में 10 मिनट मिलता है उसमें इतना अच्छा पढ़ाई होता है हमारा, क्योंकि मालूम है कम समय है, तो उस कम समय में बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। लेकिन जब पढ़ने के लिए बहुत समय होता है तो नींद आती है, आलस आ जाता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा सेवा रहता है तो हमको समय का मूल्य समझ में आता है। हमको जप करना भी अभी केवल आधा घंटा, हमको चार माला अच्छी तरह से करना चाहिए, तो बड़े ध्यान से अच्छी तरह से जप करते हैं, और बोलते जब ऑफरिंग में लगते हैं और पीछे बैठते हैं, फिर उस समय में जो हम 10 मिनट पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ के हमको बहुत कुछ आता है। माधव प्रभु बता रहे थे, उन्होंने सारा भक्ति रसामृत सिंधु जब वो पुजारी की सेवा करते थे तो जब ऑफरिंग के लिए भोग रखते थे और 10 मिनट उनको बैठना पड़ता था, वो रोज 10-10 मिनट करके सारा किताब उन्होंने पढ़ लिया। तो कहने का मतलब है कि जब सेवा की आवश्यकता होती है तो हमको तैयार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये नहीं वो नहीं कारण बताते रहना। भगवान हमारे हृदय में है, वो सब जानते हैं। तो अगर हमने हमारी सेवा भावना वैसी रही तो भगवान श्री कृष्ण हमारे जप के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे आराम के लिए, सब के लिए व्यवस्था कर देंगे। भगवान केवल ये नहीं देख रहे हैं कि हम 16 माला रोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भगवान ये नहीं देख रहे हैं केवल कि हम रोज पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है, हमको करना ही चाहिए अवश्य, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भगवान देखते हैं वो है हमारी भावना, हमारी सेवा भावना। हम वैष्णवों के दासानुदास बनने के लिए तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कि अभी तक हमारे अंदर घमंड है, कि अभी तक हम चाहते हैं कि हम आगे आए, या हम केवल आराम से रहें। नहीं, गोपियों की विशेषता यह है, राधा रानी की विशेषता भी यह है। आगे चल के ये रामानंद राय बोलने वाले हैं इस संवाद में कि राधा रानी और कृष्ण का प्रेम समझने के लिए, उनकी लीला समझने के लिए हमको गोपियों के संग में जाना चाहिए, गोपियों के पदचिन्ह में चलना चाहिए। और गोपियों की विशेषता क्या है कि वो खुद कृष्ण का संग नहीं प्राप्त करना चाहती हैं, वो केवल राधा रानी को कृष्ण से मिलाना चाहती हैं, इसी में उनको आनंद है, इसलिए वो पीछे पीछे रहती है। और गोपियों में से भी वो गोपियां जो राधा कृष्ण की सेवा करती हैं वो भी डायरेक्ट उनकी सेवा नहीं करना चाहते, वो उनके जो सेवा करते हैं उनके पीछे रहना चाहते हैं, दासानुदास रहना चाहते हैं, और उनके पीछे दासानुदास ऐसे कई हैं। तो गोपियों का भाव है कि हमेशा हम पीछे रहेंगे, जितना ज्यादा हो सके उनकी सेवा करेंगे, और उनके प्रेम में तनिक भी कोई स्वार्थ नहीं है। यह है गोपियों के प्रेम की विशेषता। और फिर राय रामानंद कहते हैं कि राधा रानी का प्रेम कैसा, फिर जिस तरह गोपियां राधा रानी और कृष्ण को एकत्र लाना चाहती हैं, वैसे जो श्रीमती राधा रानी है वो गोपियों को श्री कृष्ण के पास ले जाना चाहती हैं। कौन कोई कारण ढूंढती हैं कि कैसे कोई गोपी को कृष्ण के पास ले आए। और जितना आनंद श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के साथ होने में मिलता है वो तो अतुल्य है ना, वो आनंद, लेकिन उससे कोटि गुना आनंद राधा रानी को मिलता है जब वो किसी दूसरे गोपी को कृष्ण के पास ले जाती है। ये है गोपियों के पदचिन्हों में चलना, मतलब जब कोई सम्मान का समय आता है, अन्य भक्त सामने हम पीछे, हमको नहीं चाहिए। जब कोई सेवा का मौका आता है, परिश्रम का मौका आता है, दूसरों की सेवा करने का मौका आता है, हम आगे, हम दूसरों की सेवा करेंगे। ये है गोपी भाव, गोपियों के पदचिन्हों में चलना। गोपी भाव मतलब नहीं कि हम सोच, हम अपने मन में, मैं गोलोक वृंदावन मोर हूं और नाचते रहेंगे जैसे प्राकृत साहजीय करते हैं वृंदावन में, मैं गोपी हूं पे साड़ी पहन के जाना, पुरुष भी साड़ी पहन के करते, ये सब साहजीय। प्रभुपाद इसकी बहुत कड़क निंदा करते थे कि ये लोग जानते नहीं गोपी भाव क्या है। वो सोचते हैं कि एक पुरुष है, उसने महिला की साड़ी पहन ली और गोपी जैसे बात करने लगा, वो गोपी हो गया। ऐसा नहीं गोपी होता है। जब प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की तो शुरुआत में पश्चिम देशों में, अमेरिका में कई भक्त थे, उन्होंने एक गोपी भाव क्लब चालू कर दिया और ऐसे ऊपर 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 की बातें वो करने लगे। प्रभुपाद को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उनको क्लब को बंद कर दिया, उन भक्तों को भी संस्था से बाहर निकालने की धमकी दे दी कि गोपी भाव क्या है तुम लोग जानते हो, अभी तक शारीरिक भावना से दूर नहीं आए, तुम लोगों के लिए केवल शरीर आत्मा, शरीर आत्मा, शरीर आत्मा, यही शरीर आत्मा के अंतर समझो। तो ये गोपी भाव नहीं, ये प्राकृत सहजीय हो जाता है। सच्ची गोपी भाव मतलब ये है भक्तों के बीच में हमारा वर्ताव कैसे रहता है, ये ही हमारा सच्ची हमारी परीक्षा है। जो भक्त आगे से सम्मान अपने आप के लिए लेना चाहेगा, हर जगह में अपने आप को आगे रखना चाहेगा, वो कभी भी राधा रानी की कृपा नहीं प्राप्त कर पाएगा। लेकिन जो भक्त हमेशा दासानुदास की भावना रखेगा कि हमेशा सेवा करो ना जोरदार, जितना हो सके उतना, लेकिन श्रेय जाना है या जो सम्मान जाना है या सबका गुणगान होना है, अन्यों का, अन्यों के लिए होना चाहिए, हमारे लिए नहीं। ये जो सेवा की भावना, अपने आप को नम्र लेना करना, अपने आप को तुच्छ समझना, अन्य भक्तों को श्रेष्ठ समझना, अपने से वरिष्ठ अन्यों को समझना। अगर हम तथाकथित वरिष्ठ भी हैं लेकिन अगर हम वास्तव में वरिष्ठ हैं तो जो हमारे से बाद में जो भक्ति में आए हैं, हम क्या अपने आप को उनके सेवक समझते हैं कि उनके प्रभु समझते हैं। सच्चा वरिष्ठ भक्त वो है जो अपने आप को सबके सेवक, सबका सेवक समझता है, नए भक्तों का भी सेवक समझता है। वो ऐसे नहीं सोचता कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूं। हाँ, कभी कभी नए भक्तों को मार्गदर्शन करना पड़ता है, वो एक सेवा होता है वो भी। तो हर चीज में सेवा, सेवा भाव, सेवा भाव, सेवा भाव। अगर दो व्यक्ति हैं, एक जो कि अच्छी तरह से जप करता है, पढ़ाई भी करता है, लेकिन उसका हृदय कठोर है क्योंकि अंदर अहंकार है, घमंड है, तो उसके अंदर यह अहंकार हो जाएगा कि मैं सबसे अच्छा भक्त हूं, मैं कितनी अच्छी तरह से जप करता हूं, कितनी अच्छी तरह से मैं कीर्तन बोलता हूं, क्लास देता हूं, पुस्तक वितरण करता हूं, कुकिंग का जो भी सेवा है मैं करता हूं। ठीक है, वो सेवा कर रहे हैं इसलिए भगवान प्रसन्न तो है, लेकिन उतना प्रसन्न नहीं जिससे कि उस भक्त से जिसके अंदर शायद उतनी कलाएं ना हो, जिसके बारे में ज्यादा भक्त जानते ना हो, उतना प्रसिद्ध ना हो, भक्त नम्र है, हमेशा पीछे पीछे रहता है, किसी को मालूम नहीं ये भक्त है भी या नहीं है, उसका शायद नाम भी कोई नहीं जाने, प्रवचन नहीं दे सकता है शायद, वो कीर्तन भी अच्छा नहीं कर सकता, कोई भी विशेष गुण नहीं, लेकिन हृदय में सेवा भावना रखता है, वो भी सोला माला करता है, वो भी पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन हो सकता है समझ नहीं पाता वो क्या पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसकी भावना यही है तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। अगर भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें वो क्षमता दी है कि हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, करना चाहिए। अगर भगवान ने हमें कोई कला दी है गाने के लिए, गाना चाहिए। भगवान ने श्रृंगार करने के लिए हमें कोई कला दी है, करना चाहिए अवश्य। जो भी कुछ हमने भगवान, जो भी कुछ भगवान ने हमको दिया है, उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में अवश्य हमें करना चाहिए। परंतु ये करके अगर हमारा हृदय कठोर हो जाए तो फिर क्या फायदा? कठोर होना मतलब क्या है? घमंड आ जाना, अहंकार हो जाना। जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो हमारा बर्ताव अन्यों के साथ निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। ये एक परीक्षा है। जब कोई व्यक्ति नम्र रहेगा, हमेशा उसका अन्य भक्तों के साथ वो व्यवहार एक तरह का रहेगा। जब घमंड अंदर से आ जाता है तो अन्यों से व्यवहार भी उसी प्रकार का हो जाता है। तो भक्ति मार्ग में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हृदय को कोमल बनाना है, मक्खन की तरह, नहीं तो हमारे लिए बहुत तकलीफ होगा आगे चल के। जितना कठोर हमारा हृदय है उतना जोर से आवाज आएगा। जब लकड़ी को आप तोड़ने जाएंगे कट करके आवाज आता है, कड़क, जितना कड़क होगा उतना ज्यादा दर्द होता है। नरम रहेंगे, घास का तिनका घास के ऊपर पैर रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घास ऐसे फिर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सेवा भाव का अनुशीलन करना, दासानुदास, हम लोग रोज सुनते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कोई चीज को सुनने से भी उसको हम सहज ले लेते हैं, अगर बहुत सुन लिया दासानुदास, लेकिन इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। यह है सच्चा गोपी भाव। तो सेवा का मौका हमको मिलता है, उसमें हमको सरदर्द होता है, कोई बात नहीं। अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं हमारी सेवा से, वह अन्य वैष्णवों का सरदर्द कम हो रहा है और उसके लिए हमको सरदर्द हो रहा है, बहुत अच्छा, ये मेरे जीवन की सफलता है। अगर हम नहीं करेंगे कि ये सरदर्द है तो दूसरों को सरदर्द लेना पड़ेगा। दूसरे भक्त चुप नहीं बैठने वाले हैं, दूसरे भक्त सेवा करेंगे उसको, और क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा हो रहा है तो उनको सरदर्द हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको सरदर्द नहीं चाहिए, उनको चाहिए। उनको तो ठीक है, चलो उनको सरदर्द हो जाए भला ठीक है, लेकिन हमको नहीं चाहिए। ये भाव भगवान देखते हैं, प्रसन्न नहीं होते। तो भक्त की भावना क्या है ना, उनको सरदर्द नहीं होना चाहिए, उनका सरदर्द कम करने के लिए हम सरदर्द ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अपने आप सरदर्द लेते लेते हम जब भी छोड़ दें, पढ़ाई भी छोड़ दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो घड़ी की तरह नहीं होना चाहिए, पेंडुलम होता है ना, कभी इधर सेवा, ऐसे सेवा करो 24 घंटे सो नहीं, कुछ नहीं करो, और दूसरा कि हमको केवल पढ़ाई करना है, केवल जप करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होना है। हमको सही संतुलित ढंग से चलना चाहिए। संतुलन नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में संतुलन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और इस संतुलन का आधार है सेवा, सेवा भाव। माता यशोदा ने भी श्री कृष्ण की स्तनपान कराते हुए छोड़ दिया और दूध जो उबल रहा था चूल्हे के ऊपर उसको ठीक करने के लिए गई। इसका मतलब है जब हमारी भक्ति परिपक्व होती है, जब हमारे हृदय में पूरी तरह से सेवा भावना विकसित हो जाता है, तो उस समय हम जानते हैं, भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि इस समय हमें माला छोड़ के जाना चाहिए कि माला करना चाहिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है सोलह माला भी नहीं हुए, सोलह माला की माला छोड़ के हमको वो चीज करना पड़ता है भगवान की, जैसे यशोदा मैया ने किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बहाने हम ढूंढे कि ऐसे माला को साइड में रखे और चले। चल हमको सेवा करना था, हमको माला माला क्यों नहीं किया, हमको सेवा था, हमको जाना पड़ा, हमने सुना था कि संबंध लेना चाहिए। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, जितना हम सिंसियर रहेंगे उतना भगवान हमको बुद्धि देंगे। हर चीज हम सूत्र के आधार पर नहीं कर सकते कि ये ऐसे ऐसे चलना फिर ऐसे नहीं, भगवान अंदर से प्रेरणा देंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, अंदर से भगवान।